जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे। श्री प्रभुपाद की। आप सबका श्री वृंदावन धाम में स्वागत है। वैसे भी आप वृंदावन धाम में ही थे, क्योंकि आपको याद होगा ना, मैंने बताया था कि श्री पौराणिक जो वृंदावन धाम है उसमें नंदगांव बरसाना यावट गोवर्धन जमुना सब सम्मिलित हैं। तो हम वृंदावन से ही वृंदावन आ रहे हैं, से चर्च गेट से दहीसर आ रहे हैं, मतलब मुंबई में ही हैं। उसी तरह से वृंदावन से ही वृंदावन में आ रहे हैं, लेकिन अभी पौराणिक वृंदावन से भौगोलिक वृंदावन में आ रहे हैं। जिस जगह पर हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी का मंदिर विराजमान है उस जगह पर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। और इस समय आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसे भक्ति वेदांत हॉस्पिस कहा जाता है। आप में से कितने लोग यहां पर पहले आए हैं? बाकी सब लोग पहली बार आए हैं। तो ये बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको इस जगह का इतिहास बताऊंगा। जिस जगह पर आप बैठे हो उसको रमण रीति कहते हैं। सब लिख लेना अच्छी तरह से, ताकि बम्बई जाके आपको स्मृति के लिए लाभ होगा। वृंदावन धाम की यात्रा में जो भी देखा वो याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। रमण रीति यानी वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो ये वो भूमि है। प्रभुपाद जी ने जब ये जगह लिया, हरे कृष्णा, जो ये जगह ले लिया बहुत पहले 1975 के आसपास, 73 के आसपास, तभी यहाँ पर बहुत घना जंगल था और यहाँ से 28 किलोमीटर राधा कुंड धाम है, राधा कुंड श्याम कुंड, जहाँ पर आप कल जाएंगे। तो यहाँ से 28 किलोमीटर राधा कुंड तक कहीं भी सूरज की रोशनी जमीन को टच नहीं करती थी, इतना गहरा जंगल था। आप सोच सकते हैं, कभी भी सूरज की किरण जमीन पर पहुंचती नहीं थी। उस समय यहां पर शेर और सिंह और भालू भी हुआ करते थे। तो प्रभुपाद ने ये जगह ले लिया। लोग कहने लगे कि जगह क्यों लिया, इधर कौन आने वाला है, इस जंगल में कौन आएगा। प्रभुपाद जी ने कहा, समय सब धीरे धीरे आपको बताएगा क्या होने वाला है, इस जंगल में कैसा मंगल होने वाला है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। और आज के तारीख में मुंबई में जितने जमीन के भाव हैं, उतने या उससे ज्यादा भाव जमीन के यहां पर हैं। तो समय एक सबसे बड़ी शक्ति है जो सब चीज को परिवर्तित कर देती है, जवान आदमी को बुढ़ा बना देती है, सुखी आदमी को दुखी और दुखी आदमी को सुखी बना देती है, धनी आदमी को गरीब बना देती है और गरीब आदमी को धनी बना देती है, और जीवित व्यक्ति को मृत बना देती है। तो जब प्रभुपाद जी ने जगह लिया, फिर धीरे धीरे मंदिर का काम शुरू किया। फिर बहुत धीरे, कहते हैं 77 के आसपास इसका उद्घाटन हुआ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन रामनवमी के दिन में इसका उद्घाटन हुआ था श्री प्रभुपाद जी के मंदिर का। लेकिन उसके पहले भी वो जहाँ पर भी दुनिया में रहते थे, वो सब जगह पर मॉर्निंग वॉक जाते थे, सुबह जाके टहलते थे, मंगल आरती होगी, मंगल आरती के बाद में फिर जपमाला लेकर अपने भक्तों के साथ में घूम के आते थे, और बराबर 7:15 बजे वो दर्शन आरती के लिए मंदिर पहुँचते थे। तो श्री कृष्ण बलराम मंदिर उत्तवी बना नहीं था, बाद में बना, लेकिन सुबह मंगल आरती करके प्रभुपाद जी परिक्रमा रास्ते पर चलते हुए इस जगह पर आकर रुकते थे और यहां से वापस लौट के जाते थे। तो ये जगह है, ये परिक्रमा रास्ते पर है। पहले वो रास्ता कच्ची मिट्टी का हुआ करता था, ब्रज रज का हुआ करता था। तो हमारा ये जगह परिक्रमा रास्ते पर भी है, श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा रास्ते पर है, जो परिक्रमा के पास में हमारा कृष्ण बलराम जी का इस्कॉन मंदिर भी है। तो ये मंदिर जमीन जो थी वो राधा रमन जी के गोस्वामी, जो प्रभुपाद जी के परम मित्र थे, श्रीमान विश्वंभर गोस्वामी महाराज, जो आज के जो गोस्वामी हैं उनके वो पिताजी हैं, उनके पास में भक्ति सिद्धांत जी भी आया करते थे और लाला बाबू मंदिर में वो उनके लिए लेक्चर्स अरेंज करते थे। तो उन गोस्वामी की ये जमीन थी और वे गोस्वामी हमेशा एकांत में आकर यहाँ पर भजन किया करते थे, क्योंकि अभी तो पूरा डेवलप हो गया है, पुराना एकदम घना जंगल जैसा था और कुछ खंडेर जैसे कुछ स्ट्रक्चर थे, बहुत कुछ 30-30 बड़े 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 पेड़ थे उसमें, अभी भी है लेकिन दिखते नहीं, वो सब कवर हो गए बिल्डिंग में। तो उस समय वो विश्वंभर जी महाराज यहाँ पर आके भजन भी करते थे, प्रभुपाद जी भी अपने सवेरे में रोज यहाँ पर जब भी वृंदावन में रहते थे तो इस जगह तक आते थे। कालांतर में फिर प्रभुपाद जी अंतर्धान हो गए तो खुद लोगों ने सोचा कि प्रभुपाद जी का मेमोरियल पार्क होना चाहिए, स्मृति उद्यान होना चाहिए, उसके लिए ट्रस्ट बना और उसमें ये जगह खरीदी गई। वो ट्रस्ट बना और फिर भी 5-7-10 साल बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद स्मृति उद्यान की कुछ प्रगति नहीं हुई। उस बीच में देखो, वो वहाँ पर एक फोटोग्राफ है, देख रहे हैं सब लोग, लेफ्ट में एक माता जी का फोटोग्राफ है। उनका नाम है अर्चा विग्रहा माता जी। वो शीला गिरिराज महाराज जी की शिष्या हैं। वो साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी फेमस आर्टिस्ट थी। वो जैसे होता ना फिल्म स्टार वगैरह, वैसे वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत धनी भी थी और गिरिराज महाराज की शिष्या बनी वो। लेकिन 93 में उनको कैंसर हुआ और तब तक उन्होंने अपने वृंदावन धाम में एक कोठी भी खरीद ली थी अपने लिए। बहुत रिच थी वो, तो वो वहाँ पर कैंसर हुआ तो वहाँ पर आके वो रह गई कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे अभी वृंदावन धाम में आना है। तो बहुत ही पीड़ा में, दर्द में रहा करती थी। तो उनको वृंदावन धाम में भक्ति भृंग गोविंद महाराज, गुरु महाराज उनके गिरिराज महाराज और बड़े बड़े सन्यासियों का संग मिला। बड़ी उच्च कोटि के भक्त थी वो, विदेशी थी फिर भी। और उसी घर में जो यहाँ से केवल 5 मिनट के अंतर पर है, उसका देहांत हो गया। और उस देहांत के समय आप सोच सकते हैं, उनके खुद के गुरु महाराज और 4 से 5 सन्यासी और बहुत सारे भक्त उनको घिरे हुए थे और भगवान का नाम का गुंजन हो रहा था। वो गुरु महाराज के उपस्थिति में, गुरु महाराज की कृपा से प्रार्थना करते हुए वो शरीर छोड़ दिया उसने। लेकिन जब वो आखिरी दिनों में थी, तभी वो बार बार अपने गुरुदेव को कहती थी कि यहाँ पर एक बैक टू गॉड हेड हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल संघ बहुत मिला लेकिन मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला। दर्द निवारण करने के लिए या कुछ पट्टी करना है, कुछ ऐन मौके पे कुछ दवा देना है उनके लिए, कुछ चाहिए, क्योंकि अंतिम समय बहुत कठिन होता है, बहुत दर्द वाला होता है, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है उसमें, मेडिकल, सोशल, मेंटल, फैमिलियल, बहुत सारा कौटुंबिक सहायता करनी पड़ती है। केवल मेडिकल ही नहीं होता है, लेकिन मेडिकल भी जरूरी होता है दर्द का निवारण करने के लिए, ताकि हमारी चेतना दर्द से मुक्त रहे, भगवान का विचार करने के लिए फ्री रहे। तो वो उसको नहीं मिला सपोर्ट, लेकिन फिर भी बहुत उच्च कोटि की भक्त थी वो, इसलिए इतने बड़े दर्द को सहन करते हुए भी वो भगवत भावना में स्थित रही। तो बार बार कहती थी कि यहाँ पर एक ऐसा मेडिकल क्लिनिक होना चाहिए जिसमें लास्ट स्टेज में लोगों को हेल्प मिल सके मेडिकल, क्योंकि सबसे बड़ा तकलीफ होता है ना वो दर्द वाला होता है, मरने के समय या मरने के पहले बीमारी से। और दर्द में व्यक्ति भगवान के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। दर्द विरहित कर देते आपको, तो आप फिर भगवान के बारे में सोच सकते हैं, क्या करना है मुझे, किसका दर्शन करना है, क्या जप करना है, कितना करना है, क्या पूजना है, क्या सुनना है, कौन सा लेक्चर सुनना है, वो सब आप सोच सकते हो। लेकिन दर्द में आप कुछ सोच नहीं सकते हो। तो मृत्यु के समय आपको अगर भगवान के विषय में सोचना है, तो वैसे भी अनुकूल वातावरण निर्माण होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से धाम होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए, भक्तों का द्वारा किया हुआ कीर्तन होना चाहिए, ये स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट हो गई। और शरीर की दृष्टि से डॉक्टर होना चाहिए, दर्द निवारण करने के लिए आपके साथ में होना चाहिए, आपका कोई कष्ट होता है, कभी यूरिन ब्लॉक हो जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए डॉक्टर होना चाहिए, और कुछ समस्या होती है तो उसको समाधान करने के लिए डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए। तब ये सब स्थितियों को मैनेज करते हुए जब मरीज दर्द फ्री रहेगा, तब वो अपने आप ही भगवान के विषय में विचार करने में सक्षम रहेगा। उदाहरण के तौर पर एक मायापुर में प्रभुपाद के शिष्य थे, उनको बहुत भयंकर कैंसर हो गया था, इतना भयंकर कैंसर हो गया था कि उनका मुंह जो था ना वो पूरा फूल गोभी की तरह हो गया था। सोच सकते हैं, पूरा मुंह में जैसे फूल गोभी तैसे उग रहे हैं, ऐसे कैंसर फैल गया था। इतने कुरूप हो गए थे वो, बहुत भयंकर दर्द में थे, 15 दिन तक रात को सोए नहीं वो। आप सोच सकते हैं, एक रात नहीं सोएंगे तो आपको कितना हालत खराब हो जाएगी। आप ट्रेन से आए बैठ के, कितना वो चुस्ती से वर्णन कर रहे थे आप कि हम रात भर सोए नहीं, बैठे बैठे आए, है ना, एक रात की बात है वो, कि 15 दिन नहीं सोए। और आप तो ट्रेन में ऐसे दर्द में नहीं थे, ऐसे ही बैठे थे, नींद आ रही थी, भयंकर दर्द में 15 दिन नहीं सोए। तो जब हमारे माधवानंद प्रभु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे ना इंजेक्शन दे दो, मुझे मर जाना है अभी, मैं और ये दर्द सहन नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है उस विषय में, तो उन्होंने तुरंत दर्द निवारण की दवाई दे दी उसको, बहुत हाईएस्ट दवा दे दी। दर्द ऐसे ही कम हो गया, तो इतनी पेंडिंग नींद थी, तुरंत सो गया आदमी वो। तो अगले दिन माधवानंद प्रभु मंगलारती गए, तो मंगलारती में, अभी मंगलारती सब भगवान को देखते हैं, अंधेरा होता है, भगवान के ऊपर लाइट होता है, सब लोग को वही देखते हैं। जैसे मंगलारती समाप्त हो गई तो बाजू में देखा तो वही व्यक्ति खड़ा है, इतना बड़ा पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं, फूल गोभी का कैंसर लेके सबके बीच में खड़ा है। इसको देख के भी लोग डरते थे, कोई सेवा करने को जाते नहीं थे उसकी, ना भयंकर उसका दर्शन था। तो मंगल आरती समाप्त होने के बाद में बोलता है, प्रभु जी मुझे अभी नहीं मरना है, पूरी तैयारी के साथ मरना है। क्या हुआ परिवर्तन बीच में? रात को तो बोल रहा था कि मुझे मरना है तुरंत, अभी मार दो। सुबह बोल रहा है, नहीं नहीं प्रभु जी, रात का बात गंभीरता में मत लेना, मुझे अभी जीना है और मैं तैयारी करके फिर अच्छी तरह से मृत्यु को सामना करूंगा। जैसे दर्द निवारण हो गया, विश्रांति हो गई, तो उसकी चेतना सही जगह पर आ गई। फिर वो सोचने लगा कि मेरी मृत्यु तो होने वाली है, तो मैं क्या क्या करूं, मुझे क्या क्या करना है, कितना समय है, क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, इसके बारे में उसके विचार मंथन शुरू हुआ। तो हॉस्पिस में यही काम होता है। हॉस्पिस में हम जानलेवा बीमारी से आप तो मुक्त नहीं करते हैं, लेकिन जानलेवा बीमारी में जब जान जाने वाली है तो वो भगवत ध्यान में, भगवत स्मरण में कैसे चली जाए, इसकी योजना मेडिकली, सोशली और स्पिरिचुअली एक साथ में यहाँ पर करते हैं। तो फिर उनकी इच्छा थी और उन्होंने शरीर छोड़ दिया अर्चा विग्रह माता जी ने। तो गिरिराज महाराज जी के मन में ये चिंतन चलता रहता था कि कैसे करूं, कैसे करूं। जब ये प्रभुपाद जी स्मृति उद्यान का प्रोजेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इस तरह हॉस्पिस बनाया जाए। हॉस्पिस का मतलब वो होता है जहाँ पर लोग लास्ट स्टेज में आते हैं। हॉस्पिटल का मतलब होता है कि वहाँ पर लोग बीमारी लेके आते हैं और ठीक होकर घर चले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिस के अंदर वो जानते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, और उस समय की सुविधा के लिए, उस समय तैयारी करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए यहाँ भर्ती होते हैं। कुछ लोग घर पर रहते हैं और हमारी सेवा लेते रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आके एडमिट होकर सेवा लेते रहते हैं। ऐसा एक पूरा होम केयर और इन पेशेंट केयर का एक पूरा क्राउड है। हमारे पास कुछ 425 मरीज ऐसे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से बहुत सारे घर पे हैं और कई सारे यहाँ पर एडमिट हैं। तो फिर उन्होंने वो जगह हमको भक्ति वेदांत अस्पताल को दे दिया, ये जगह। तभी हम आए थे 6 सितंबर 2006 को यहाँ पर आए थे इस भूमि पर देखने के लिए क्या है इधर। और फिर 4 साल उसका कामकाज चलता रहा और 26 अगस्त 2010 को इसका उद्घाटन हुआ। 2010 के 2 साल पहले एक भाड़े की जगह पर, किराए की जगह पर हमारा ये काम चालू था। 5 मरीज भर्ती करने का इंतज़ाम था, तो 2010 में वो शिफ्ट कर दिया और इस बिल्डिंग में अच्छी तरह से हॉस्पिस शुरू हुआ। तो यह है भक्ति वेदांत हॉस्पिस, अंतिम सफ़र में आपका साथी। क्योंकि तो अंतिम सफ़र में कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा तो भयंकर असहाय होता है। उसके बाद कितना बड़ा पद होगा, शक्ति होगी, पैसे होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, बड़ी बड़ी सुविधाएं होगी, कोई कमी नहीं किस चीज़ की, जो चाहे मिल सकता है। ऐसे सब कुछ होने पर भी अंतिम स्थिति में व्यक्ति बड़ा असहाय रहता है। मृत्यु के सामने कोई भी अपना बाजू दिखा नहीं सकता है। मृत्यु के सामने सब फेल हो जाते हैं, सब क्षीण हो जाते हैं। उस समय केवल भगवान का नाम सहारा देता है। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान से की गई प्रार्थना, भगवत ध्यान, भगवत स्मरण, जो पहले जिंदगी में जो भी कुछ किया है भगवान के विषय में, वही सब काम आता है। और जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके इतना सब कमा कर रखा, उसमें से एक वस्तु भी आपको जीवन के अंतिम समय पर काम नहीं आती है। इस बात पर आप सबों को अभी विश्वास होना चाहिए, तभी तो सबको विश्वास होता है। मजबूरी से विश्वास हो जाता है कि कुछ भी, किसी भी चीज का कोई काम नहीं आ रहा है। ना परिवार से मैं बचने वाला हूं, ना पैसे से बचने वाला हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरे पास डॉक्टरों का समुदाय है, उनसे नहीं बचने वाला हूं। मैं बड़ा अधिकारी था, सब मशीनरी मेरे पीछे है, वो भी काम नहीं आने वाली है। ये अनुभूति तो उस समय होगी आपको, कोई आके प्रवचन करने की जरूरत नहीं, आपने अपने आप समझ में आएगा कि ये सब कुछ काम का नहीं है। लेकिन अभी वो समझने के लिए, इस वक्त समझने के लिए प्रवचन की आवश्यकता है। अभी आपको ये समझाना जरूरी है, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है ना, पैसा भी है, भोग भी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, घूम रहे इधर उधर, मजा कर रहे हैं, परिवार है, पैसा है, अधिकार है, प्रभाव है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो आपको लगा कि एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इस बीच में भी कुछ झटका लग गया और मृत्यु का समय आ गया, तो वो सारी चीजें आपको कोई लाभ नहीं होगा उसका। तो इसलिए श्री वृंदावन धाम में जो भी शरीर छोड़ता है वो कहते हैं कि सीधे भगवत धाम चला जाता है। लेकिन इसकी फुल प्रूफ गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर वृंदावन धाम में रहकर आपका मन अगर वो चाट और लस्सी पे रहेगा तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम, मृत्यु के समय जो याद करोगे वो उसी को प्राप्त करोगे आप। और अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे भगवान कहते हैं तो उनको प्राप्त हो जाओगे। तो जगह तो फेवरेबल है, बहुत अनुकूल है, धाम है भगवान का, दिव्य धाम है, ट्रांसेंडेंटल है, त्रिगुणातीत है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको उस फेवरेबल अनुकूल वातावरण में भगवान की याद करने की कोशिश आपको करनी है और सफल होना है उसमें याद करने में, तब जाकर आपको इस धाम के प्रभाव से सीधे आप गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जगह जो हमने बनाई है, ये शरीर के दृष्टि से, मन के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से आपको भगवान की स्मृति दिलाने के लिए ही बनाई गई है, सारी उसकी योजना उस प्रकार की है। तो आप सब लोगों का भक्ति वेदांत हॉस्पिस में स्वागत है, पेशेंट के रूप में नहीं। लेकिन ये याद रखना कि सबका डेस्टिनेशन यही है। आज मैं बैठ के कथा कर रहा हूं, मेरा भी अंतिम डेस्टिनेशन यही है, मुझे भी लास्ट में इधर ही आना है। और आप लोग सब लोगों को सहायता करना है मुझे भगवान की याद करने के लिए, तब बोलना मुझे आप, आपने बड़े बड़े प्रवचन किए थे, अभी क्या हो रहा है आपको, इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों पुकार रहे हो। तो मैंने कहा जो बड़े बड़े प्रवचन आपने सुने थे ना, उसके क्या कहते हैं उसको, प्रतिसाद के रूप में मुझे मदद करना आप भगवान की याद करने के लिए, क्योंकि कथा करना बहुत आसान है, बता रहा हूँ आपको मैं, कथा करना बहुत ही आसान है, उपदेश करना तो और भी आसान है दूसरों को। लेकिन खुद आध्यात्मिक प्रगति करना, खुद भगवान की साधना, भगवान के विषय में सेवा करना और खुद खुद की आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल है, वो एक अगले स्तर पे है। वो जो लोग अच्छे प्रवचन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे कृष्ण भावना मोहित है ही, जरूरी नहीं है, आप रट के भी प्रवचन दे सकते हो, बार बार सुनकर, बार बार रटकर, बार बार बोलकर भी आप एक्सपर्ट हो सकते हो और फिर भी आपका मन विषयों में घूम सकता है, कथा करते हुए भी मन में विषय चल सकते हैं, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई वस्तु, कोई पैसा, ये मन में चल सकता है, क्योंकि अंतिम चेतना जो है वो भगवान ही जानते हैं क्या चेतना में चल रहे हैं, आप जानते हैं, भगवान जानते हैं, जो आपको सुन रहे हो शायद जानते नहीं होंगे, इसलिए कथा करना आसान है। तो इसलिए कथा करना सेवा है तो वो करते रहनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति एक अलग विषय है, और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं भी कथा कर रहा हूँ, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो जाए इसलिए कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए इसलिए सुन रहे हैं, और उसके सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य है, चाहे आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मृत्यु का सामना करना ही है, उस परीक्षा से किसी को डिस्काउंट नहीं है। मैं डॉक्टर हूं तो नर्सिंग की एग्जाम देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप नर्स हो तो डॉक्टर के एग्जाम देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको मेडिकल के एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, इंजीनियर हो, मृत्यु की एग्जाम देना सबको जरूरी है, कोई उसको एग्जेम्पशन उसको टाल नहीं सकता है, उस परीक्षा को सबको उस परीक्षा को देना ही है। और दुर्भाग्य से हम बाकी सबकी परीक्षा की तैयारी बहुत जोरदार कर देते हैं, कितनी क्लासेस है, कितने टेक्स्ट बुक्स है, कितने गाइड्स है, कितने लाखों रुपए फीस लेते हैं, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं उसको सीईटी एंट्रेंस देने के लिए, कितना तैयारी करके एग्जाम देते हैं हम लोग, और वो फिर हासिल करते हैं एडमिशन और बन जाते हैं वो जो बनना है। लेकिन एक ऐसा एग्जाम है जो मस्ट है आपके लिए, देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उसकी तैयारी आमतौर पर कोई करते हुए नजर नहीं आता है, और जो वो उसकी तैयारी यौवन से, बचपन से करता है, उसको ही बुद्धिमान माना जाता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी कर रहा हूं मैं, अल्टीमेटली मुझे वो परीक्षा देना है और उस परीक्षा में मुझे अव्वल दर्जे में पास होना है, ताकि इस परीक्षा का अंजाम मुझे गौलोक धाम में पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे अभी से लगातार ध्यानपूर्वक, मनपूर्वक, चिंतन पूर्वक वो लक्ष्य सामने रखना है, कि चाहे मैं बुढ़ा हूँ, जवान हूँ, औरत हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, पुरुष हूँ, मुझे अंतिम समय भगवान की याद करनी है। वो जिसका लक्ष्य रहेगा ना, वही सफल होगा, फिर उसी को वृंदावन धाम भी मिलेगा, उसको डॉक्टर सपोर्ट भी मिलेगा, भक्त लोग भी आएंगे, कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि उसने जीवन भर इसी का चिंतन किया है। तो भगवान उसके चिंतन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे ताकि वो उनका चिंतन करने में सफल हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस श्रमण रीति में बैठकर सब लोग प्रार्थना करना कि अंतिम समय हम आपको याद कर सकें। तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान खेलते रहते हैं, तो जो भी यहाँ गुजरता है वो भगवान उसे आके गले लगा लेते हैं, प्रेम से आलिंगन देते हैं और धाम में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी। कई लोग यहाँ पर आना चाहते हैं लास्ट स्टेज में, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो चाहते हुए भी सफ़र नहीं कर सकते वहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर है वहाँ से फिर वहीं शरीर छोड़ देते हैं जहाँ पर भी हैं। कई लोग जो 100 लोग समझो यहाँ पर आ सकते हैं मरने के लिए, तो 10 ही लोग पहुँच पाते हैं, 90 लोग नहीं पहुँच पाते किसी न किसी कारण से, इमरजेंसी हो जाती है, ट्रैफिक ट्रैवलिंग नहीं हो सकता है, इतना साधन नहीं है, यहाँ तक आने तक बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि भगवत स्मरण जो अंतिम क्षण में होना चाहिए और होता जो है वो भगवत कृपा का ही एक लक्षण है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरे मेहनत के बलबूते पर मैंने आज भगवान को याद कर लिया है। अरे अंतिम क्षण को भूल जाइए, अभी भी आपको भगवान की स्मृति अगर होनी है तो उनकी कृपा से ही हो रही है। ये मत समझना कि मैंने मेहनत की है, मैंने टिकट निकाला है वृंदावन का। टिकट निकालने के बाद भी कथा में आप सो सकते हो जहाँ पर याद दिलाया जा रहा है ना, ऐसे आपके पलके ऐसे 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 किनारे पे आ सकती है। इसलिए अभी भी किनारे में आ रही है तो खड़े हो जाओ और कथा सुनो। हाँ, श्री वृंदावन धाम में बैठकर भगवत चर्चा करने का भाग्य बहुत अलौकिक होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मंदिर बनाया। श्रील प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया मथुरा में केशव जी महाराज के साथ, उनकी तरफ से परिवार छोड़ दिया, फिर आ गए यहाँ पर गुरु जी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए। राधा दामोदर जी के मंदिर में रहे, वहाँ पर भागवत का अनुवाद किया और फिर यहाँ से विदेश चले गए। कहते हैं राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी और सारे परंपरा के आचार्यों का दर्शन हुआ और रूप गोस्वामी ने उनको प्रत्यक्ष आदेश दिया, अभी आप जाओ, अभी आप एकदम सही स्थिति में आ गए हो, योग्य समय है, अभी आप विदेश जाके अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। तो जब वो जा रहे थे तभी जितने भी उनके ब्रजवासी भक्त थे यहाँ के, मित्र थे, संत थे, महात्मा थे, उन्होंने बोला कैसे महात्मा हो आप, जीवन के अंतकाल में वृद्धावस्था में सब संत लोग ब्रज में आते हैं, सब कुछ छोड़कर अपना सेवा जो स्थल है, सेवा के जहाँ पर सेवा कर रहे थे वो सब छोड़कर ब्रज में आकर भजन करने के लिए आते हैं, ताकि कहीं भी शरीर छूट जाए तो ब्रज में ही छूट जाए भगवान की याद में। और आप ऐसे वृद्धावस्था में वृंदावन छोड़ के ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर पाप ही पाप है, सात समुद्र के पार, कोई सन्यासी समुद्र पार नहीं करता है कभी भी, अब एक नहीं सात पार करने वाले हो, वो जहां पर लोग मांसाहार व्यभिचार नशा जुआ खून खराबा झूठ मूठ सब कुछ करते हैं, कोई पाप ऐसा नहीं है जो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो करते हैं वो लोग, वास्तव में आप कल्पना करते रह जाएंगे वो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको, इतना पाप वहां पर होता है। उस जगह जा रहे हैं आप, कैसे भगवान की स्मृति होगी आपको। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को विश्वास था अपने गुरु जी की आज्ञा पर, इसलिए उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया और सात समुद्र पार करके 40 दिन बोट पे बैठकर वो न्यूयॉर्क बॉस्टन हार्बर में पहुंच गए। और पता नहीं क्या होगा उधर, किसको मिलना है क्या, मतलब बहुत सारा अनिश्चिति थी वहां पर। फिर उन्होंने कैसे भी करके एक साल बहुत कष्ट में गुजारा, कोई सपोर्ट नहीं, पैसा नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, प्रचार करने की व्यवस्था नहीं, क्या करना क्या है। बहुत सारा भागवतम सेट लेकर आए थे, प्रथम खंड का अनुवाद, उन्हें प्रथम खंड का अनुवाद हुआ था उस समय। एक साल के बाद धीरे 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 कुछ जमने लगा और धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे और धीरे धीरे उसमें से कुछ लोग रहने लगे, कुछ लोग भक्त बने, कुछ लोग ब्रह्मचारी बने, उनको प्रचार किया, जप करना शुरू किया, ऐसे करके धीरे 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 उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो स्थापन किया। तो रजिस्टर किया तो कुछ भी नहीं था, एक रेंटल जगह थी किराए की। और रजिस्टर क्या किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भक्तों ने और वकील ने पूछा, इसमें इंटरनेशनल क्या है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ना एक प्रॉपर्टी है, ना कोई फॉलोअर है, ना कोई। बोले चिंता मत करना, समय के साथ इंटरनेशनल हो जाएगा, बनाओ अभी उसको। तो उस समय जब कुछ भी नहीं था हाथ में, तब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया गया, और धीरे धीरे कुछ ही समय में वो इंटरनेशनल बन गया। देश विदेश में मंदिर बनने लगे, हजारों भक्त बने, लाखों किताबें बटी, हाँ सैकड़ों मंदिर बने देश विदेश में, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को ही देश में। और फिर प्रभुपाद जी 14 बार विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, केवल 12 साल की अवधि में। उम्र के 70 साल की अवस्था में शुरू किया और 81 साल की अवस्था तक ये सब किया। हम लोग सब रिटायर हो जाते ना, आपके आप में 70 ईयर कौन है इसमें, इसमें कोई 70 ईयर है, 65 है कोई, इधर 60 है, 60। देखो आपके मन की अवस्था क्या है आज, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, बहू आप करो, बेटी आप करो, रिटायर हो गए हैं, डॉक्टर को मिल रहे बार बार, उसकी दस्तखत दे रहे हैं उसके दरवाजे पे, है ना। आपके उम्र के 10 साल के बाद में प्रभुपाद जी विदेश गए अकेले बोट में बैठकर, दो दो हार्ट अटैक को सहते हुए। और फिर उसके बाद भी 12 वर्ष में, कोई जवान नहीं होते गए ना उसके बाद में, वो 60 साल के बाद में 59 साल के हो गए, 59 के बाद में 58 के हो गए, 58 से बाद 54 के हो गए, फिर 24 के हो गए, लास्ट में एकदम 20 साल के जवान हो गए। इतना प्रचार किया, ऐसा नहीं था ना, घटती हुई उम्र, ढलता हुआ स्वास्थ्य। 81 साल के बुढ़ापे की अवस्था में 14 बार विश्व का भ्रमण किया। एक बार विश्व का, एक देश का भ्रमण करेंगे ना तो आप 8 दिन घर पे आके सो जाएंगे। वो जेट लैग होता है, क्या क्या भयंकर चीज होती है, जब आप समुद्र पार करते हो ना, समय बदलता है, बहुत सारा कष्ट होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस भयंकर अवस्था में 14 बार विश्व का भ्रमण किया। फिर आखिर जब बहुत वृद्ध हो गए तो भी 1977 के कुंभ मेला में उधर पहुंच गए, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद को। उनका फिल्म ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, इतने सारे गर्म कपड़े पहन के रखे हैं, और धीरे धीरे त्रिवेणी संगम के किनारे पे चल रहे हैं, भक्तों के समुदाय के बीच में, चेहरा ऐसा पूरा वृद्ध अवस्था में है, बिल्कुल लग रहे बीमार हैं बहुत सारे। उसके बाद में वृंदावन आए और इस मंदिर में उनका कमरा बना हुआ है जो आप लोगों को देखना है, जिसमें उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। और कैसे बिताए, 50 लोग सेवा कर रहे हैं उनकी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना देख रहे, दिख पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ऐसे खाली दूसरों के ही जिम्मे थे। नहीं, आखिरी समय तक उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। जिस व्यक्ति को पलके भी उठाना मुमकिन नहीं है, इतने कमजोर हो गए वो, सोच सकते हैं आप, हमें आपकी पलके तो 50 बार हिल रही है, आप कथा में इधर उधर देख रहे हैं, हिल रहे हैं, हाँ किसी की गिर रही है सामने बैठ कर भी, तो वो पलके उनको खुद को उठाने में शक्ति नहीं। लोग उनको ना पलके उठाकर दिखाते थे, प्रभुपाद जी देखो ये आपको मिलने आए हैं, तो वो उठाए हुए पलके में से देखते थे और छोड़ दिया तो गिर जाती थी पलके, इतने वृद्ध अवस्था में थे, इतने कमजोर और नाजुक अवस्था में थे। लेकिन फिर भी उनके मुंह पर ऐसा माइक्रोफोन पकड़ते थे और वो दशम स्कंद के ब्रह्म विमोहन लीला के श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य बोल रहे हैं। आखिरी उन्होंने अनुवाद ब्रह्म सम्मोहन लीला का किया था, दशम स्कंद वाला, जब ब्रह्मा जी आके बछड़ों को चुरा लेते हैं, तो वहां पर उन्होंने आखिरी बीच में ही मतलब चले गए वो, तो आगे का अनुवाद जो है उनके शिष्यों ने पूरा किया है। 11 दशम स्कंद का बचा हुआ 11वां 12वां पूरा करके भक्तों ने उसको पूरा सेट बना दिया है। लेकिन आप उसको उनकी फिल्म देख सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है वो फिल्म, नाम क्या उसको पता नहीं, लेकिन फाइनल जर्नी, फाइनल लेसन आप देख सकते हैं कि कैसे केवल चर्म और हड्डी इतना ही बचा है शरीर में, मांस नाम के तो कोई चीज ही नहीं है, जो भी है केवल स्किन है और बोन है, चेहरा भी ऐसा है पूरा, उससे केवल कौटी है खाली बस, लेकिन कुछ चमड़ी है इसलिए लगता है प्रभुपाद जी हैं। ऐसे अवस्था में उनको ऐसे पड़े हुए हैं बिल्कुल, ऐसे कई चदरें ढली हुई उनके ऊपर, और भक्त लोग उनके मुंह पे ऐसे माइक्रोफोन पकड़ के श्लोक बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी उस श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड, और एक लाइन में अनुवाद भी कर रहे हैं और तात्पर्य भी बोल रहे हैं, और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर उसको टाइप करके उसको किताब के रूप में बना रहे हैं रोज के रोज। आप बोल सकते हैं ना कि अभी इतना सब किया, अभी ठीक है, अभी आप आराम करो, भगवान का ध्यान करो अभी। लेकिन मैंने कहा ना कई बार आपको 5 दिन में कि सेवा ही हमारा भगवान का एक ऐसा अनोखा संबंध वाला काम है जो हमेशा भगवान के साथ में आपको बनाए रखता है संबंध में। बिना सेवा के कोई कृष्ण जीवन है ही नहीं, कृष्ण भक्ति का। अंतिम क्षण तक वो भगवान की सेवा में लगे रहे, फिर उसी बिस्तर पे कहते 3.5 महीना उन्होंने कुछ खाया और पिया ही नहीं, नथिंग इन, नो फूड नो ड्रिंक, 3.5 मंथ्स, पता नहीं कैसे उनकी आत्मा जीवित रही उस शरीर में, लेकिन लगातार कृष्ण के बारे में बोलते रहे अनुवाद के रूप में, जितना हो सके उतना उनको करना था। उसी बिस्तर पे फिर भगवत सब अपने शिष्यों के बीच में, सामने गुरु जी की चित्रपट थी उसको देखते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो बिस्तर भी अभी मेंटेन करके रखा है, जो वो घर में रहते थे वो घर भी पूरा मेंटेन करके रखा है, बैठने की जगह है, उनके रॉकिंग चेयर है, जो लास्ट में उनको वो पालकी में लेकर जाते थे मंदिर में दर्शन कराने के लिए, उस कमरे बाजू में है लेकिन फिर भी उठाकर लेके जाते थे। ऐसी महान आत्मा थे प्रभुपाद जी। तो तब वो जो लोग ब्रजवासी थे उनके मित्र जिन्होंने उनको कोसा था कि कैसे संत हैं आप छोड़ के जा रहे हैं, सबने दंडवत किया उनको, वो कहते ये सच्चे ब्रजवासी हैं, सारी अपनी सेवा पूरी करके फिर ब्रज में आए और यही शरीर छोड़ा। तो इसलिए कुछ जब भी वो जा रहे थे तभी आगे क्या होने वाला है लोगों को पता नहीं था, समय के साथ में वो लोगों के लिए प्रकाशित हुआ कि क्या होगा और क्या हुआ, और जब उन्होंने उनका अंतिम समय देखा तब वो समझ गए कि इस हकीकत में ये बहुत बड़े महान संत हैं जो सच्चे ब्रजवासी हैं, जिन्होंने जब यहाँ से छोड़ के चले गए तो उन्होंने ब्रज अपने हृदय में लेके गए। वो जैसे आप सब लोगों को भी लेके जाना चाहिए, यात्रा कर रहे हो आप तो इस ब्रज को हृदय में लेकर चलना चाहिए आपको और घर लेके जाना चाहिए, ताकि इस ब्रज की याद आपको बनी रहे, ब्रज में जो अनुभव लिया हो आपको याद आता रहे और उस बहाने आप ब्रज में ही रहे उस चेतना के उस स्मृति के आधार पर। यही यात्रा का पर्पज है बाय द वे, हाँ, कोई साइट सीइंग का प्रोग्राम नहीं है, कोई मनोरंजन भोजन अच्छी जगह करने का प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम एक ही है कि ऐसा ब्रज आपको दिया जाए जो आप ऐसे ऐसे ग्रहण करें उसको कि अपने साथ में ले जाए उसको हृदय के स्तर पर। और ट्रेन में हो, अभी जा रहे हो बैक टू बॉम्बे, बैक टू दिल्ली, कहीं जा रहे हो, बॉम्बे पहुंच गए, काम कर रहे हो, अपना नौकरी धंधा कर रहे हो, घर गृहस्थी चला रहे हो, सब समय पर पीछे माइंड में इस ब्रज की याद बनी रहनी चाहिए अखंड। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना तभी जाकर अंत में याद आएगा, नहीं तो 2 घंटा याद करेंगे और 20 घंटा याद नहीं करेंगे तो फिर याद आएगा वही जो 20 घंटे में याद कर रहे थे वही याद आएगा, क्योंकि जितना समय अधिक देंगे उसके अंदर वही याद रहेगा ना आपको। 22 घंटा परिवार के लिए इंद्रिय भोग के लिए दिया और 2 घंटा प्रयास किया सोते सोते उनकी याद करने का, तो ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? 22 घंटे का वही उसका सार जो था उसमें, सार में आपने क्या याद किया था, क्या चिंतन था आपका, कहाँ मन लगाया था, कहाँ पर प्रेम हुआ था आपका, कहाँ आसक्ति हुई थी, वही याद आएगा आपको। तो वो जो चिंतन है 22 घंटे का वो भी कृष्ण भावना वाला करना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे हाँ 24 घंटा में वही चलता था, उसका सार यही था, मन इसी में लगा था, आसक्ति भी इसी में थी, चिंतन भी इसी का था, तो फिर आपको वो ही याद आएगा। जीवन में जहां पर भी दिल लगाया आपने, आपको पता है आपने कहाँ लगाया है, और किसी को पता नहीं है, आपको पता है और भगवान को पता है, जहां पर भी आपने दिल लगाया है वही आपको याद आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। और कोई भी चीज आपको याद नहीं आएगी जो आपने नहीं किया वो मन लगाकर, जब मन लगाकर भोग लिया हो तो भोग की याद आएगी, मन लगाकर भगवत चिंतन किया हो तो भगवान की याद आएगी। आपको अभी तय करना है, आपके हाथ में अभी भी बहुत जीवन है, अगर भगवान की इच्छा रही तो काफी साल है आपके पास, अभी आपको तय करना है कि मुझे आज से प्रधान चिंतन किसका करना है, बाकी तो कर्तव्य और ड्यूटीज चलते रहते हैं, बच्चों की, परिवार की, वाइफ की, हस्बैंड की, वो तो प्रपंच है ना, वो तो करना ही है, करना ही पड़ता है, वो छोड़ नहीं सकते उसको, लेकिन बाय द वे करते करते प्रधान रूप में आपको भगवत चिंतन ही करना है। ये हमारे प्रभुपाद जी सिखाए हैं हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस इन डे टू डे लाइफ। आपका रोजी रोज का निजी जीवन जीते समय कैसे भगवत चिंतन में आपको रहना है, कैसे कृष्ण भावना भावित बनना है, ये सिखाने के लिए उन्होंने इतना बुढ़ापे का इतना कठिन समय बिताया। उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी रात भर जगकर। कोई ऐसा आचार्य हमने देखा नहीं आज तक। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन बता रहा हूं मैं, कोई भी ऐसा महात्मा आचार्य देखा नहीं जो रात की नींद को खोकर रात भर ग्रंथ लिखता रहे इतनी बुढ़ी और बीमार अवस्था में, ऑल नाइट। मुझे तो रात को नींद खोना तो छोड़ जाओ, एक घंटा कम नींद मिला ना दिन भर सर दर्द होते रहते हैं, कैसे कथा करूं कैसे कथा करूं, सर फटा जा रहा है, ऐसे होता है। नींद गई नहीं है, एक घंटा कम मिली है, या बीच में दो बार जाग आई मुझे कुछ आवाज से डिस्टर्ब हो गया मैं, तो भी सुबह ठक ठक होते रहता है दिमाग में। और ये अपनी इच्छा से 10:30 को रात को उठते थे एक डेढ़ घंटा सोने के बाद, और शुरू करते थे लिखना, क्योंकि उनको शांति और चिंतनशील समय चाहिए था। दिन भर में तो काम चलते रहते थे मंदिर के सब, तो शांति चिंतन पूर्वक अगर कुछ सोचकर लिखना है, लिखना बहुत कठिन काम है बाय द वे, बोलना बड़ा आसान काम है, लेकिन लिखना होगा ना, तो सोच समझ के वाक्य बनाकर उसको उतारना है, ताकि आगे जाकर हजारों साल तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे। कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई मन का विकल्प होना नहीं चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारा जरूरी होता है। इसलिए वो रात का समय चुनते थे, सब दुनिया सो रही है वो अपना लेखन काम कर रहे हैं, सुबह तक करते थे लेखन, फिर खुद आकर सोए भक्तों को जगाते थे मंगल आरती के लिए, फिर भक्त लोग तैयार होते थे, प्रिय भी मंगल आरती अटेंड करते थे, फिर सबके साथ जब भी करते थे, फिर प्रवचन भी करते थे। प्रवचन तो करना ही है, वही आचार्य हैं अकेले, कोई और कोई है नहीं करने वाला, तो उनको ही प्रवचन देना है, फिर लेटर को आंसर देना है, भक्तों के विश्व भर के खत आ रहे हैं, फिर मैनेजमेंट है कि प्रभुपाद जी ये भक्त पैसा लेके भाग गया, प्रभुपाद जी पैसे नहीं है, बांध काम कैसे पूरा करें, प्रभुपाद जी ये ऐसा हो गया, प्रभुपाद जी वो पति पत्नी को छोड़ के भाग गया, सब विदेशी लोग थे, अभी क्या बताएं, क्या क्या समस्या है आपको वर्णन करें, उसका समाधान करना है, गाइड करना है उनको, 1-to-1 गाइड करना है, नए भक्तों को इंस्पायर करना है। फिर कोई माता पिता आते हैं झगड़ा करते हुए, आपने हमारे बच्चे को छीन लिया, उसको ब्रह्मचारी बना लिया, हमारा एक ही बच्चा था और तुमने उनको ले लिया, तो उनको भी सांत्वना देना है, समझाना है, कैसे कितने किस्से हैं उनके। ये गिरिराज महाराज के पिताजी आए थे, बोल रहे ये लो ये चेक लो, बड़े धनी और बड़े मशहूर व्यक्ति थे अमेरिका के, करोड़पति लोग व्यक्ति थे वो, अरबोंपति थे, उनका बच्चा भक्त बन गया, तो आ गए प्रभुपाद जी के पास, बोलते प्रभुपाद जी ये चेक खाली चेक है ले लो, इसमें आपके मन में कितनी कल्पना हो सकती है उतना अमाउंट लिख लो, मिल जाएगा आपको, हमारा बच्चा वापस कर दो। तो प्रभुपाद जी कितने निष्प्रुव थे, आप बोलेंगे अच्छा मौका है, पैसा भी चाहिए ना, मंदिर बनाना है, क्या क्या करना है, तो पैसा चाहिए अपने को, एक भक्तों को खो देंगे इसमें क्या है, पैसा आएगा तो और भक्त बनाएंगे इसमें आगे, और पैसा लेके बाद में इसको ही वापस लेके आएंगे, वो भी हो सकता है। ऐसा ही हमारा दिमाग है, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई अच्छा फिश हाथ में आया है पकड़ो उसको, लेकिन संत का हृदय जो अलग होता है। संत कोई बिजनेस करने के लिए दुनिया में नहीं आते हैं। हाँ मेरा पर्पज ये है, मेरा उद्देश्य टारगेट है कि इस जीवन में मेरे को 108 मंदिर बनाना ही है किसी भी हालत में, तब तक मैं मरूंगा ही नहीं, ये टारगेट बना के नहीं आए थे वो। वो दुनिया को कृष्ण भावना देने के लिए आए थे, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से आदमी हो, विदेशी हो, देशी हो, सबको कृष्ण भावना निष्प्रो भावना से देने के लिए आए थे वो। तो क्या जवाब देते हो? वो कहते हैं बच्चों को अपने पास रखो, आप चेक की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे को पूछो उसको क्या करना है, मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर उसको घर जाना है तो अभी भी बिना चेक दिए हुए आप मुझे उसको घर ले जा सकते हो। तो बच्चे को पिताजी ने पूछा तुम क्या चाहते हो, बोले मैं घर नहीं आना चाहता, मैं इनकी सत में रहना चाहता हूं। और वो बच्चा जो है वो प्रभुपाद के कान में बोल रहा है प्रभुपाद जी ले लो चेक ले लो। सोचो आप, तो बोले मेरे पापा बहुत धनी है, आप मैं नहीं आपको छोड़ के जाऊंगा, मैं भी रहूंगा और चेक भी ले लो। प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो वो उन्होंने क्या दिखाया कि संत को आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो, संत कोई खरीदने की वस्तु नहीं है। संत को किसी भी चीज से आप वश नहीं कर सकते हो, केवल भगवान की भक्ति से आप उनको वश में कर सकते हो। तो मैंने एक ही बताया आपको, ऐसे कई सारे प्रसंग उनको हैंडल करने पड़ते थे दिन में। एक बार तो लॉस एंजलिस में सारे भक्तों के माता पिताओं का सम्मेलन हुआ, क्योंकि वो बहुत सारे थे दुखी लोग। वे कितने लोगों को अकेले मिले थे, उन्होंने सबको साथ में बुला लिया, भाई आ जाओ एक सभा कर लेते हैं जो भी करना है। हमारे भी जीवन में ऐसे हुआ था, हमारे समय पे भी बहुत डॉक्टर भक्त बने थे, सबके माता पिता बड़े परेशान थे, तो हमारे गुरुदेव ने एक बार सबके माता पिताओं का एक सम्मेलन बनाया था। वो नाम का सम्मेलन था लेकिन उसमें युद्ध ही युद्ध हुआ, केवल केवल युद्ध हुआ। माता पिता एकदम जोरदार गुरु महाराज पर बम गोले फेंक रहे हैं, और वो कभी और बीच में एक व्यक्ति अनुवाद कर रहे हैं उसका, क्योंकि वो हिंदी में बोल रहे हैं, बम गोले हिंदी में जा रहे हैं, बीच में एक अनुवादक है उस पर वो गोले पहले आते हैं, फिर वो अंग्रेजी में करके गुरु महाराज को छोड़ते हैं, फिर गुरु महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। कुछ लाभ तो नहीं हुआ, अंतिम तो मुठभेड़ होके फिर सब चले गए, लेकिन स्थिति जैसे थे वैसे ही रही, हम भी वैसे रहे और वो भी वैसे ही रहे। तो ऐसे प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में एक माता पिताओं का सम्मेलन किया था, सब दुखी माता पिताओं को, एक जगह पर नहीं, आगे भी बहुत जगह पर हुआ, लेकिन लॉस एंजलिस में हुआ था मुझे बराबर याद है। तो ये सब दिन भर करके, दिन भर मीटिंग, दिन भर कई बड़े प्रोग्राम पंडाल के है, कई बॉम्बे में ऐसा हुआ था ना क्रॉस मैदान पे 10,000 लोग आ रहे हैं, ऐसे भी बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। कभी प्राइम मिनिस्टर को मिलते थे, कभी किसी अधिकारी को मिलते थे, लाल बहादुर शास्त्री को मिले, इंदिरा गांधी को मिले, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। और साथ साथ में किसी भक्त को दांत में दुख रहा है तो भी उनकी गुरु पूजा चल रही है, और वो भक्त जो है वो गुरु पूजा करते करते उनको चरण में फूल अर्पण करने आ रहा है तो उसके मुंह से बदबू आती है ना दांत में कष्ट होने से, तो वो तभी पूछ रहे क्या हुआ तुझे, इधर आ जा ये ले, और लिख के प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि लौंग का तेल ले लो, ये गोली ले लो और दवा करो। उधर गुरु पूजा चल रही है, क्या बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्म और सब कुछ आरती उतारी जा रही है, और उधर एक सामान्य भक्त को दांत का दर्द हो रहा है उसको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और फिर जेब में से ऐसा पर्स खोलते हैं, ये लो 20 रुपये लो और दवा खरीद लो, मुझे बताना बाद में कैसे हुआ। इतना सामान्य लोगों का सामान्य काम भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी मिल रहे हैं। हम जैसे लोग क्या बोलेंगे, ए जरा इसको लेके डॉक्टर के पास ले, मेरे पास टाइम नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखा जा, ये पैसा लेके इसको बाद में बिल देना, वो जो भी है देखभाल करना उसकी, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास हर व्यक्ति के लिए समय था, प्रधानमंत्री के लिए भी था और एकदम यकश्चित बेचारे गरीब भक्तों के लिए भी था। इतना सब करने के बाद शाम हो जाती है, सब लोग थक जाते हैं, सब सो जाते हैं, ये भी सो जाते हैं, और 2 घंटे में फिर उठते हैं, वापस चालू श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। और केवल श्रीमद् भागवतम नहीं था, 80 किताब लिखी उन्होंने, 80 किताब टोटल, चैतन्य शिक्षामृता, चैतन्य चरितामृता, भगवद्गीता तो पहले लिखी थी, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद किया, और बाकी छोटी मोटी कितनी किताबें लिखी, हाँ पाथ ऑफ परफेक्शन, ऑन द वे टू कृष्णा, 80 किताबें लिखी, क्योंकि जानते थे मैं नहीं भी रहूंगा, मेरे किताबें रहेंगी और उसके माध्यम से मैं लोगों से मिलता रहूंगा और लोग प्रेरणा लेते रहेंगे और भक्ति को अपनाते रहेंगे। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी कई दिन तक उनके विषय में बोल सकते हैं जो उन्होंने किया हुआ है, अनंत किताबें एक के बाद आज जाकर उनको 40 साल हो गए, अभी भी उनके प्रति किताबें आ रही है उनके विषय में, क्योंकि हर एक भक्त को वो अलग दिखे, अलग भक्त को अपना अपना अनुभव हुआ, तो वो भी मुझे जो अनुभव हुआ आपको नहीं हुआ तो मैं भी लिख रहा हूं आप भी लिख रहे हैं, तो आपकी भी एक किताब आ रही है मेरी भी एक किताब आ रही है। इस तरह से आज भी देखो 40 साल हो गए उनको गुजर के, आज भी उनके भक्त जो अभी भी जिंदा है जीवित हैं वो भी किताब लिख रहे हैं, उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, उनका इंटरेक्शन, उन्होंने क्या क्या उपदेश किया था, क्या क्या जीवन में उन्होंने हमारे लिए लाभ दिया था, कैसे हमारा जीवन समृद्ध कर दिया उन्होंने, कैसे 4 चांद पर लगा दिया हमारा जीवन, क्या था पापी जीवन, कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, ये सब उनको बताना है। इसलिए अभी अभी शिवाजी पार्क में 14-15 जनवरी को एक और किताब आई, चेसिंग द राइनोज विद द स्वामी, उसके पहले विशाखा माता जी की किताब आई, 5 years and 11 months वो लाखरी दिन प्रभुपाद के, उसके ऊपर एक और किताब आई हुई है टीके जी डायरी, तमाल कृष्ण महाराज, आवर टू आवर रिपोर्ट ऑफ प्रभुपाद, आवर टू आवर, जरा हेल्प करो उनको, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ी कलयुग की समस्या आज की तारीख की ये मोबाइल है, सबसे बड़ी समस्या। हर चीज में डिस्टर्ब करता है, हर चीज में डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हम मति भ्रष्ट कर देता है। सबका कीमती समय मनुष्य जीवन का घंटों घंटे इसमें बिता देते हैं, कुछ भी एक रुपए का भी लाभ नहीं है, भौतिक लाभ भी नहीं है। हर जब जगह पे इसका एंट्रेंस है, सब जगह घुस जाता है, कहीं भी बचता है, कभी भी बचता है। महत्वपूर्ण काम हो रहा है उधर बच जाता है, कि टॉयलेट में खड़े उधर में बच जाता है, क्या करें। लोग टॉयलेट में भी आंसर देते हैं उसका, इतना वो मजबूर करके रखा है इसने। भजन नहीं होता इसके लिए, सुबह से लेकर एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में जब हरे कृष्णा व्हाट्सएप को देख रहे हैं, हरे कृष्णा। तो मैं प्रभुपाद के विषय में कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने इतना सब अपने लिए किया है, इतना सब त्याग किया है। और उस जमाने में भारत में वो जो है ना, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक शक्ति है, निराकार निराकार भगवान है, आज भी है प्रभाव। वो सारे माहौल में उन्होंने बड़े विश्वास और हिम्मत के साथ में सबको समझाया कि भगवान जो है वो निराकार शक्ति नहीं है, भगवान व्यक्ति है, आप और हमारे जैसे व्यक्ति हैं वो, उनको भी भावनाएं हैं, उनको भी हाथ पैर नयन सब कुछ है, उनके शक्ति में विलीन नहीं होना है, हमको प्रेम और भक्ति का संबंध निर्माण करना है। जैसे हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं, माता पिता से करते हैं, बच्चे से करते हैं, वो प्रेम जो होता है ना व्यक्ति से होता है, वो दो व्यक्तियों में प्रेम होता है। तो प्रेम में कोई एक रूप नहीं होते हैं, प्रेम भावना एक रूप हो जाती है, लेकिन प्रेम में दो व्यक्ति एक रूप नहीं होते, वो दो ही रहते हैं। जब तक दो है तब तक प्रेम चलते रहता है उनके अंदर बीच में। ऐसा भगवान के व्यक्तित्व के विषय में विश्वासपूर्वक ठोस उन्होंने स्थापना किया विचारधारा का, और लोगों को एक चरम भावना चरम ज्ञान भगवान के विषय में उन्होंने दिया। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए परम ज्ञान देते हुए न कचराते हुए उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। बड़े क्रांतिकारी है उनका ये सब कार्य। तो कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन आज आप बड़े भाग्यवान हो, श्रील प्रभुपाद जी के वृंदावन में आए हो। उन्होंने क्या किया, वृंदावन में थे, वृंदावन का भाव पूरा ग्रहण किया और जाकर लोगों को बांटा, और उन लोगों को वृंदावन में लेके आए। वो पहले वो भाव दिया, अट्रैक्शन दिया, फिर उनको खुद लेके आए वृंदावन में, और उनको रहने के लिए फिर गेस्ट हाउस बनाया, खाने पीने के लिए बनाया। इतना प्रेरणा दिया होगा उन्होंने, कहाँ से कहाँ लेके आए वो। हम लोगों तो आप वृंदावन बॉम्बे से वृंदावन लेके आए, कुछ और नहीं, जर्नी है, दो घंटे का फ्लाइट है, कुछ नहीं, 18-18, 20-20 घंटे का फ्लाइट लेकर वो लोग यहाँ पर आए। कुछ लोग यहीं बस गए, कितना इंस्पिरेशन मिला होगा उनको। तो लोग वहाँ का सब जीवन, ऐशो आराम का जीवन छोड़ के, भोग का जीवन छोड़ के यहाँ पर आके फुल टाइम बस गए। यहाँ पर बड़ी बड़ी इम्पाला गाड़ी में घूमते थे, यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं और मंगलारती में आ रहे हैं, साड़ी पहन के पल्लू लेकर भारतीय जीवन जी रहे हैं। जब हम लोग वहाँ भाग कर उनके हाफ पैंट पहन रहे हैं, वो यहाँ पर आकर वो फुल पैंट मतलब फुल ड्रेस साड़ी धोती कुर्ता हमारा पहन रहे हैं। कितना प्रेरणा दिया होगा उन्होंने ऐसा जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। सोचो आप, एक इंडियन गर्ल को, अभी इंडियन गर्ल होगी समझो कोई, उसको तुम जीन पैंट मत पहनो, बाल खुले मत छोड़ो, बाल के बांध के रखो, ढक के रखो अपने आप को, पूरा शरीर में वस्त्र पहनो, ये परिवर्तन करने के लिए कितना कष्ट होगा। इतना झगड़ा करते हैं माता पिता से, यही पहनना है, टाइट स्लैक्स पहनना है, सब खुला दिखना चाहिए, ये ड्रेस कोड जो हमने अपनाया विदेशियों का, उसको कुछ छुड़वाना है किसी को आज, समझो अपनी लड़की को या अपने बहू को या किसी को, तो कितना संघर्ष घर में होता है उसके लिए, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है उसके ऊपर। ये तो इंडिया की बात है, विदेश में जाकर उन्होंने उन लड़कियों को लड़कों को कितना प्रेरणा दिया होगा कि हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए। उनको लोगों ने बताया था, बाकी सन्यासियों ने जो पहले जाके आए थे, उन्होंने कहा कि मत जाना आप उधर, हम जाके हार के आए हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए हम। तो ये बड़े जिद्दी थे, गुरुजी की आज्ञा थी तो जाना ही था, तो कह रहे आके जाना ही है ना, तो 2-3 टिप्स आपको दे रहे हैं कि आपको थोड़ा बदलना होगा। पहले तो आपको कांटा चमचे से खाने को सीखना पड़ेगा। वो लोग उंगली से नहीं खाते, वो कांटे चमचे से खाते हैं, वो लोग जमीन पर बैठ कर नहीं खाते, कुर्सी पर बैठ कर खाते हैं, आपको भी सीखना पड़ेगा। और उनको कभी भी बोलना नहीं कि मांस छोड़ना और ये छोड़ना वो छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकते, आपको थोड़ा सहूलियत देना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल में कि भाई आप थोड़ा मांस भी खा सकते हो, चलेगा, जप करो भगवान के नाम का, बाकी सब कुछ ठीक होगा। फिर कभी भी उनको बोलना नहीं धोती कुर्ता पहनने के लिए, वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा सब निगेटिव फीडबैक देके, लेकिन प्रभुपाद ने ना खुद हाथ चम्मच हाथ से मतलब कांटे चम्मच से खाया, उनको उल्टा सिखा दिया हाथ से खाने के लिए। वो लोग जमीन पे बैठ के खाने लगे, बाद में ये बेडशीट भी उनको पहना दिया, ये ना, इसको बेडशीट बोलते हैं वो लोग, 5.5 फुट के होते बेडशीट, एक आदमी सो सकता है उसके ऊपर। तो लोग पूछते थे ये बेडशीट क्यों पहनते आप लोग। हाँ, ऐसे लोगों को उन्होंने परफेक्ट धोती पहनने को सिखाया, कुर्ता पहनने को सिखाया, अलग अलग, पता है कितने हेयर स्टाइल होते हैं उनकी, यहाँ पर बाल ही नहीं होते, पूरा टक्कल, और यहाँ से ऐसे बाल गिर रहे हैं जमीन पे, ऐसे अजीब हेयर स्टाइल होती है उनको, पूरा पूरा शिखा विखा रखने वाला हेयर स्टाइल दिया, न्यू हेयर स्टाइल, क्लीन हेयर स्टाइल। लड़कियों के सारे जो हवा में उड़ रहे बाल, सब उसका आनंद ले रहे हैं, उनके बाल का वो सब बांध के पल्लू के अंदर कर दिया उसको। उनकी शालीनता, उनकी कुलीनता, उनका शील, उनकी लज्जा जो है ना, वो पूरा ढक दिया उन्होंने, उनको एक शालीन कुलीन वैष्णव स्त्री बना दिया। कितनी प्रेरणा दी होगी उन्होंने अपने उदाहरण से, अपने वचन से, अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, मैं अब इमेजिन नहीं कर सकता। कि हम देख रहे हैं हमारे अभी नए नए जवान लड़कियों को बता रहे हैं कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वो नहीं मानते हैं कि हमारे उतनी इतनी शुद्धि और परिपूर्णता है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी उस जमाने में इतने बुढ़ा व्यक्ति, कैसे उन्होंने बताया होगा उनको, कैसे आज भी जाकर 40 साल हो गए, ऐसा नहीं कि जब तक थे तब तक पहनते थे, जब गए तब वापस चालू हो गया पैंट और शर्ट, आज भी पूरा इधर मांग में सिंदूर भरते हैं, इतना बड़ा बिंदी लगाते हैं, कुमकुम वाला, तुलसी माला, कंठी, बॉर्डर की साड़ी, जप माला, मंगल आरती, बच्चे भी उनके ऐसे बच्चे हमारे इस्कॉन के अंदर कि रोज सुबह मंगला में आते हैं, धोती कुर्ता इतनी सी आधी हमारी धोती, उसमें एक तिहाई धोती है उनकी, वो धोती कुर्ता पहन के उनकी मम्मी आती है और उनको पूरा आरती का पैराफिनेरिया लेके आती है, क्योंकि तो बच्चा बोलता है कि मुझे भी मंगल आरती करनी है, जब मंगल आरती हो रही है उधर मुझे भी करनी है। तो इतना सा बालक है वो, 2.5 फुट का, वो धोती कुर्ता, सर मुंडवाया हुआ, बड़ा लंबा शिखा रखा हुआ, तिलक लगाया हुआ, हरिनाम चादर पहन के खड़ा है उधर, और मम्मी उसको अगरबत्ती दे रही है, उसके बाद में अगरबत्ती ले रही है, वो दीपक दे रही है, फिर दीपक को घुमा रहा है, जैसे पुजारी कर रहा है वैसे ही कर रहा है वो समाप्त किया तो भी समाप्त करेगा और माँ के हाथ में दिया देगा। फिर वो दिया बच्चे की इच्छा है, सबको देना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। हाँ, फिर शंख वाला पानी चाहिए, फिर उसके लिए कपड़ा चाहिए, उसके बाद में फूल है, उसके बाद में मोर पंख है, उसके बाद में अपना पहले उसके चामर है, उसके बाद में मोर पंख है, फिर शंख बजाना है, जैसे पुजारी कर रहे वो करेगा। अभी उसके लिए तैयारी करनी पड़ती होगी ना, बच्चे को उठाना है, उसको तैयार करना है, तिलक लगाना है उसको, फिर ये सारा सामान, बाती वाती बनाना है, प्लेट लेके मंदिर में पहुंचना है, कितने जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन आ रहे हैं, माँ भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, वो पूरा वैष्णव ड्रेस में लड़कियाँ लड़के, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, मालूम है आपको, आदमी लोग औरत लोग नीचे खड़े रहते हैं जमीन लेवल पे, बीच में एक प्लेटफॉर्म है पूरा लंबा चौड़ा, उसमें ये सारे बच्चे बच्चियाँ बैठी रहती हैं वैष्णव ड्रेस पहनकर 4:30 बजे। उसके ऊपर और एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ भगवान है, और एक कोने में एक लड़का आरती करते रहते। आज की बात कर रहा हूं मैं, 40 ईयर्स प्रभुपाद को जाकर हो गए हैं, फिर भी उनकी पवित्रता का प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो विदेशों पर प्रभाव है, तो हमारे पर क्यों प्रभाव क्यों नहीं है, बताओ आप, हम लोग क्यों बाल छोड़ के और ये पैंट पहन के और स्लैक्स पहन के टाइट पहन के घूम रहे हैं, सब शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका विदेशों का अनुकरण कर रहे हैं हम लोग? क्या हमारे को अपनी संस्कृति पर अभिमान नहीं है? क्या हमारी संस्कृति बहुत घटिया है इसलिए हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो करने में अपने आप को गर्व मानते हैं कि देखो हम लोग कितने एडवांस्ड हैं, कितने मॉडर्न हैं, देखो हमारी बाल के स्टाइल, देखो हमारे कपड़े, देखो आधा शरीर खुला आधा शरीर ढका हुआ है, कितने प्रगत हो गए हम। प्रभुपाद जी ने हमारे संस्कृति को उनको सिखाया, आपकी संस्कृति को उनको सिखाया, और हम वो लोग ने फॉलो किया, और हम अभी उनके द्वारा चूज कर फीकी हुई संस्कृति जो है वो आप फॉलो कर रहे हो, जो कह कर करके थक गए उसको, खा के पी के पहन के वो स्टाइल को, और आकर आपके आपकी स्टाइल को अपना रहे हैं, और हम उन्होंने फेंकी हुई स्टाइल जो है उसको उठाकर गौरव भी कर रहे हैं उसके ऊपर, देखो हम कितने मॉडर्न हैं, देखो हमारे कपड़े, देखो ये सूट मेरा, देखो ये बूट मेरा, देखो जैसे गोरा कोई लंदन का है ना, ये हमारा गर्व है। इसी में गर्व करते हैं हम, पराई चीज पर गर्व करते हैं, अपनी चीज को घिलौना मानते हैं। ये प्रगति का लक्षण नहीं है, ये हमारे अधोगति का लक्षण है, साइन ऑफ डिग्रेडेशन। तो प्रभुपाद जी की आज भी इच्छा है कि अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने भगवान पर गर्व करो। एक मंत्र, एक पंथ, एक क्या कहते हैं, एक एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत और एक संस्था को एक्सेप्ट करो, एक संस्कृति को एक्सेप्ट करो, वैष्णव संस्कृति को, और जीवन को धन्य बनाओ। तो प्रभुपाद जी आज भी जीवित हैं, अपने किताबों के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से हमारे बीच में आज भी जीवित है, आज भी हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं। उनकी किताब पढ़ने से हमको बहुत सारी प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है, और यह संस्कृति को जगाना ही प्रभुपाद जी की बढ़िया सेवा होगी, जिसके लिए वो आए थे, जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग किया है। तो उन्होंने यहाँ पर कृष्ण बलराम जी को स्थापन किया, राधा श्याम सुंदर को स्थापन किया, गौर निताय को स्थापन किया, और जब उनका शरीर समाप्त हो गया तो उन्होंने बताया था पहले से कि मेरी समाधि यहाँ बनाना है। तो नारायण महाराज, परम पूज्य भक्तिवेदांत नारायण महाराज ने उनकी समाधि अपने हाथों से बनाई। तो अपने मंदिर जाएंगे जब भी, तो तीन स्थानों को देखना है आपको। पहले मंदिर जाना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है, कृष्ण बलराम जी, राधा श्याम सुंदर जी, गौर निताई जी, और प्रभुपाद के घर में जाना है, क्वार्टर्स में जहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ा, जहाँ पर रहते थे वो। बहुत सारी उनके द्वारा यूज़ की हुई वस्तु जो है वहाँ पर संभाल के रखी हुई है, प्रिजर्व करके। फिर आपको समाधि में जाना है, और प्रभुपाद जी की समाधि में उनका शरीर वहाँ पर रखा गया है। तो शास्त्र में लिखा है कि जहाँ पर समाधि होती है उस जगह पर वो व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, आपकी प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करने का प्रयास कर सकते हैं। और जैसे हम वृंदावन में क्यों आते हैं कि हमारे ठाकुर जी कृष्ण बलराम जी, उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करने के लिए हम लोग आते हैं। टू ऑफर अवर सेल्फ, टू टेक शेल्टर, वी कम टू वृंदावन धाम। सहारा लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए हम लोग वृंदावन धाम में आते हैं। इसलिए उस रूप से आपकी यात्रा सफल हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।